गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वर गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा को प्रणाम। आज दौल पूर्णिमा श्री गौरांग जयंती श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के नवमें श्लोक का पाठ करेंगे। सुरन्मित्रान् उदासीन मध्यस्थं द्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थस्त्वेष्य साधुस्वपीच पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते मबुद्धिर्। सुरन्मित्रान् उदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य साधुस्वपीच पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हरि ओम। बहुत कड़क बात कही है। शुरू से ही श्री कृष्ण है वह सम्यक भाव रखने के लिए इंगित कर रहे हैं। संतुलित जीवन के लिए ही हमें आग्रह करते हैं कि जो पुरुष सुहृद क्या होता है, जो आपसे कुछ भी नहीं चाहता किंतु आपकी शुभेच्छा चाहता है वो सुहृद होता है। सुहृद हृदय बने हृदय वाला। एक हृदय शब्द है, बोलिए एक बार हृदय। फिर से बोलिए हृदय। ऐसा संस्कृत में होता नहीं है किंतु कल्पना और कवित्व को कोई बंधन नहीं होता है। ऋ इति हरति, द इति ददाति, य इति याति नेति। ऋ हरति जो अशुद्ध रक्त ले लेता है, द शुद्ध रक्त देता है और न अपने पास कुछ रखता है। हृदय जो शुद्ध रक्त देने के लिए अशुद्ध लोग रक्त का अपहरण करके अपने पास कुछ नहीं रखता। ये सूरज क्या है? सूरज यही है कि जो अच्छे दिल वाला है उसमें कोई आकांक्षा नहीं है हमारे पास, उसे कोई लोभ नहीं है कि मैं इसका दोस्त बनूंगा तो कभी मेरे को मदद मिलेगी इससे, ये कोई मिनिस्टर का बेटा है या मिनिस्टर है या राजा है या बड़ा पुलिस अधिकारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तुम कुछ भी रहो, आई एम योर वेल विशर, दैट्स ऑल। एक पूरी लाइन खींच के रख दी, उसको कहते हैं सुहृद। मित्र, मित्र कौन होता है? मित्र होता है जो हमारी मुश्किल में आगे रहे, मुश्किल में आगे रहे। ओ सुति ने कहा मित्र कैसा चाहिए? ढाल सरीखो होए। युद्ध में ढाल आगे रहती है, युद्ध पूरा हो गया तो पीछे चली जाती है। तो मित्र कौन है? स्मशान में रहे, दुख में रहे, पीड़ा में रहे, आगे रहे, और जब शादीवादी हो तो पीछे रहेगा। तो ये मित्र जो है वो दुख में आगे रहता है हमारे, तो वो मित्र है। वैरी कौन है? वैरी तो वैरी ही होता है, वो दिन रात यही सोचता है कि तुम्हारा नाश कैसे हो, वैरी होता है। उदासीन कौन होता है? वो ऐसा ही है, वो आप कुछ कहो ना कहो, प्यार करो ना करो, उसको नमस्ते करो ना करो, चुप बैठता है उदासीन। मध्यस्थ आपके जीवन में हमेशा संतुलन दिखता है, जरूरत होने पर आ जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं आएगा। आपसे बैर नहीं है, आपका दोस्त भी नहीं है, आपका वेल विशर भी, नाम उनको जानते हो, अरे भाई बहुत दिन से नहीं दिखे, क्या कोई विशेष बात है क्या? विशेष तो ठीक है, खुश हो यार, नमस्ते नमस्ते। अरे बहुत दिन से नहीं दिखे, कोई विशेष बात है? क्यों नहीं है यार, गुड़ू की शादी हो रही है। ठीक है, क्या करना है, आ जाऊंगा, बस। बाकी उदासीन है, बुलाए तो आएगा, नहीं बुलाए तो सीताराम। द्वेषी, वो तो द्वेषी करता है, चलो हमेशा सब जगह आपके बारे में बुरा बोलता रहेगा, कैसे इसको काटा जाए। बंधुगण, बंधुगण माने पारिवारिक, पारिवारिक। धर्मात्मा, थोड़े धर्मात्मा है, हमारे अखंडानंद जी महाराज है, प्रेमपुरी जी महाराज है, कैलाश पीठाधीश्वर है, मंगलानंद जी महाराज है, अद्वैतानंद जी, सारे संत लोग हैं, विश्वेश्वरानंद जी महाराज है, जो कल्याण के कामी है, संत है। और कहते हैं पापी, वो पापी तो जानते हैं आप क्या होता है, जो समाज के अहित करने वाला है, वो तमाम लोगों के बीच में समान भाव रखने वाला, ये बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा कृष्ण कहते हैं वही तो श्रेष्ठ है जो आपको मीठा बोले, वो नहीं है। कृष्ण के लिए समत्व बुद्धि समस्त योग का सार है। इसके पूर्व के सूत्रों में भी अलग अलग द्वारों से समत्व बुद्धि के मंदिर में ही प्रवेश की योजना कृष्ण ने की है। इसके पहले के मंत्र में किसी और दिशा से समत्व बुद्धि की घोषणा करते हैं। कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्चते, योग का अर्थ ही है समत्व, संतुलना। युक्त हार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेतसु युक्त सपना वबोधस्य योग भवति दुखा। वो बहुत खाए नहीं खाए, बहुत बोले नहीं बोले, बहुत हंसे ना हंसे, बहुत रोए ना रोए, बहुत सोए ना सोए, संतुलित हमेशा। समत्व बुद्धि का परिणाम तो एक ही होगा, यात्रा भले ही भिन्न भिन्न दिशा से आए, कोई सुख और दुख के बीच में सम बुद्धि को साधे, सुख के बीच में भी साधे और दुख के बीच में भी साधे, सुख में बहक न जाए, छके नहीं। बड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना, बहुत मुश्किल है। हम काफी साल पहले की बात है, हम एक शहर में रहते थे, हठात से जितने स्कूटर वाले हैं, जितने कार वाले हैं, जितने रिक्शा वाले हैं, सबको खड़ा करके करके वो पुलिस चेक कर रही है। बहुत पुरानी बात है, 1966-65 की बात है। हमने बोला क्या बात है भाई, हम लोग एक घंटा हमको लंच के लिए मिलता है, अब यहां लाइन में खड़े रहो तो लंच जा ही नहीं सकते। बोले कि रोबरी हो गई है। कैसे रोबरी हो गई? ओ 30,000 रुपया लूट लिया गया। 65 में जो 30,000 बहुत होता था, लूट लिया गया। कैसे लूटा है वो सब पता नहीं है, लूट लिया गया, इसलिए सबको देख रहे। अभी 3 दिन के बाद में पूरी कहानी अखबार में छप गई। एक लड़का है, वो किसी डॉक्टर के यहां कंपाउंडरिंग करता है, कॉलेज में भी पढ़ता है, उसको डिटेक्टिव कहानियां पढ़ना, उन दिनों में टीवी से भी तो था नहीं, डिटेक्टिव कहानियां है वो पढ़ने का बड़ा शौक। तो उसने कहीं से वो तमंचा खरीद लाए पुराना, और वो जो फटाखा फोड़ने का होता है ना गुजराती में चांदलिया, ठम आवाज होती है, थोड़ी आग भी निकलती है, वो ला लिए उसने, मुंह में कपड़ा बांध लिए, और कमरे में एक कपड़े का बुत खड़ा कर दिया, डमी, उसको ढाम 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 उसको मारता था। होशियार हो गए, बैंक में जाकर बैठ गया, चुप से देखता रहा है कि कौन कौन कितना पैसा लेके जा रहा है। कोई एक लड़का है आदत वाला, 30,000 रुपये थैले में डाला, चले को साइकिल में आगे, पहले तो ऐसे ही होता था, कोई मुश्किल नहीं होती थी, साइकिल में लगाया और जाने लगा। ये लड़का पीछे गया स्कूटर लेकर के, उन दिनों में स्कूटर भी नहीं थे, वो लेम्ब्रेटा होता था, लेकर के गया, ढाम 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 तीन हवा में, सोचने के पहले उसका साइकिल से थैले निकाल के भाग गया। अभी देखिए भाग कहां गया, उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था गुलाम, सफाई वाले की बेटी थी, उसके पास जाकर 30,000 दे दिया, चुपचाप रख ले, बाद में आ जाऊंगा, हम दोनों चले जाएंगे।
कितना लंबा सोच सकता है? बंबई रहने वाला बोलेगा खंडाला चले जाएंगे, और राजकोट वाला ने बोल दिया गोंडल चले जाएंगे, उससे लंबा सोच नहीं सकता है। अब तीन दिन के बाद में आया, चल कुछ रुपया दे दे, कहां जाना है तो छोड़ रुपया दे। वो क्या किया, गोंडल ही गया, अकेला ही गया, चाय की दुकान में चाय पिया, 100 रुपए का नोट दे दिया, खुला नहीं है, रख दे यार क्या फर्क पड़ता है। पान वाले की दुकान में गया, पान 100 रुपए का नोट, खुला नहीं है, रख ले यार। वो खादी सिंह लिया, रख ले यार। सिनेमा का टिकट लिया, रख ले यार। 100-100 नोट चार आदमी को दे दिए, आजकल के 1000 से बड़ी बात होती थी 100 नोट। वो सिनेमा में बैठ गया। अब तीन दिन पहले अखबार में छका है रोबरी हो गई है। अब चार आदमी छोटे से गांव में बात कर रहे हैं, आ रही है रुपए की खादी सिंह लेता है, 100 का नोट देता है, और चाराने की चाय पीता है, 100 का नोट देता है, दो आने का पान खाता है, 100 का नोट देता है, क्या बात है। पुलिस उसको फटाफट पकड़ ली है। पैसा कमा लेना कैसे भी हिसाब से, किंतु पचाना मुश्किल है, संतुलन रखना बहुत मुश्किल है। नाम भी मुश्किल है, यश भी मुश्किल है, कीर्ति भी मुश्किल है, दुख भी मुश्किल है। तमाम अवस्था में इंसान ये कंप जाता है, विचलित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं समत्व बुद्धि का एक विपरिणाम होगा, यात्रा भले ही भिन्न भिन्न हो, सुख और दुख के बीच में समबुद्धि को साधे। ऐसा भी हो सकता है कि सुख और दुख के प्रति व्यक्ति की संवेदनशीलता कम हो, यह बहुत जरूरी बात है। ये एक राधा माता जी शाम को कुछ फूल लेके आई, दो चार दिन से मैंने कहा माता जी मेरे को इन फूलों में खुशबू नहीं आती है, वो सोन चंपा लाए उसमें भी खुशबू नहीं आ रही है, गुल छड़ी लाए उसमें भी खुशबू नहीं आ रही है, फिर परसों तरसों कोई अगरबत्ती लाए, मैंने कहा इसकी तो बहुत खराब खुशबू है, अगरबत्ती लाए मैचिस का है, हाँ तो कल माचिस भी लाए, अब खुशबू आ रही कि नहीं? मैंने कहा मेरे को नहीं आ रही कोई खुशबू। कहती है फिर आप तो ENT के पास जाके नाक देखवा लो, आपकी कोई घ्राण इंद्रिया बंद हो गई, आपको चंपा में भी खुशबू नहीं आ रही है। तो मैंने कहा आती है, अच्छे फूल होने से आती है, वो पुराने होने से नहीं आती है। क्या तात्पर्य है, हमारी इंद्रियां जो है वो हमें एक ज्ञान देती है, किंतु इनके ज्ञान के दरवाजे खुद बंद करो, चाहिए नहीं। पहले ये पार्ला में रहते थे और सेंट्रल आना है तो रास्ते में बांद्रा की खाड़ी आती थी, आने से सब लोग ऐसा करते थे। अभी मुझको पता नहीं, बहुत दिन से ट्रेन में गए नहीं, तो वहां बदबू आती है। ये समझ हमारी ऐसी है कि कोई भी गंदी स्मेल आए तो अरे रे बहुत ऐसे नहीं करना, और बड़ी खुशबू बढ़िया ऐसे भी नहीं करना, यह आत्मा संयम है। क्योंकि गंदी स्मेल में हाय हाय हो नहीं करना, और अच्छी खुशबू में पिश 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 डाल लेते हैं ना लोग, तो उसमें भी थोड़ा तंग नहीं आना। कीप योर माइंड इन हार्मनी, अपने मन को समत्व करके रखो, यही कहते हैं। यहां पर संवेदनशीलता कुछ लोगों की त्वचा में स्पर्श करे तो कोई अनुभव नहीं, कोई स्पर्श करे कोई संवेदना नहीं, माधुर्य भाव भी नहीं, आक्रोश भी नहीं, स्पर्श क्या ही फीलिंग ही नहीं। कब हो सकता है, जागृति से हो सकता है, संवेदनशीलताएं सेंसिबिलिटी है ना, वो सबकी एक नहीं होती है। किसको डायबिटीज हो जाए तो संवेदनशीलता वो खो सकता है, जैसे कि पांव में थोड़ा रुई घुमाए तो पता नहीं, थोड़ा पिन चुबा के देखते हैं, डायबिटीज ज्यादा है तो उसकी सेंसिबिलिटी चली जाती है। डायबिटीज ना हो और फिर भी आपको ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनकी उपस्थिति में भी मन को अनुपस्थित कर दो। कृष्ण कहते हैं कि आपके जो सुरन है, मित्र है, उदासीन है, मध्यस्थ है, कोई द्वेष करने वाला बंधु है, तमाम के प्रति एक ही भाव, अभी अभी महाराज जी क्या कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि ईशा वैश्वे दुगुम सर्वम, तो कहा ईश्वर सर्वत्र आच्छादित है, जले विष्णु स्थले विष्णु हम कहते हैं, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत् सर्वम व्याप्त नारायण स्थित। ये वेदों के पुरुषोत्तम ने कहा यच्च किंचित जगत सर्वम, यत् किंचित जगत में जो कुछ भी है दृश्यते दिखता है, श्रूयते सुनने में आता है, दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च उसके अंदर और बाहर व्याप्य व्याप्त है नारायण स्वयं। तो फिर अगर एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो सुरन को क्या, फिर क्या भेद है आपको मित्र का उदासीन का मध्यस्थ का द्वेष का। कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, हमारी जागृति में इतनी जागृति हो कि तमाम अवस्था में ये उसी भाव को देखें, क्या हो सकता है, हो सकता है। देखिए कल हमारे महाराज कह रहे थे गिरीश भाई आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, अरे मैं जीवन का ग्रंथ पढ़ता हूं भाई, ये जो अनुभव किया है सो तो कहता हूं। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज का 60वां जन्मदिन था, ओ भगत लोग हैं, लोकल कॉलेज स्कूल के बच्चे कुछ कुछ रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, भारत भर से लोग आए, दुनिया भर से लोग आए, रात में 7:30 से 9 बजे तक जैसे सत्संग होता है आप जैसे पाठ करती हैं, जय गणेश हो, श्री सूक्तम हो, हनुमान चालीसा हो, गीता जी का एक अध्याय हो, मृत्युंजय मंत्र का एक माला जप हो, उसके बाद में किसका प्रवचन हो, तो ये उस उत्सवों में प्रवचन विवेचन कम रात में, दिन में तो होते रहते हैं, रात में किसी ने संगीत किया, किसी ने नृत्य किया, ऐसे महाराज जी ऐसे बैठे बुरा। अभी जो समाधि मंदिर है बना हुआ शिवानंद आश्रम में वो नहीं था, झोपड़ी थी छोटी, वहां एक बहुत बड़ा बिच्छू स्वामी जी के कंधे में आ गया, पहाड़ के बिच्छू है बहुत ही भयंकर होते हैं, वो काट खाया तो सांप के मापिक, स्वामी जी ध्यान में है, उनके उधर एक स्वामी प्रेमानंद जी वो भी नहीं रहे, उन्होंने देखा वैसे करते रहे, तो सब लोगों का ध्यान गया, कोई बोलता है चिमटा लाओ, कोई कहता है पकड़ो ये करो वो करो, और स्वामी जी ने धीरे से आंख खोली, क्या है जी, ठीक है ठीक है, आप लोग ये शरीर का जन्मदिन मना रहे हैं तो आप भी जन्मदिन के बधाई देने आए, शांत रहो, फिर ध्यान में चले गए। अब जब गड़बड़ ज्यादा बढ़ गई तो फिर धीरे से उठे, हाँ आप बैठिए, मैं साक्षी हूं, उमा माता जी कितना बैठिए मैं उतना ही बैठ के देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं, आप बैठिए, कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बैठिए, वैसे रहे, धीरे से उठे, इतने धीरे से उसको तकलीफ ना हो। वो थोड़े दूर गए जहां बिल्कुल जंगल जंगल है, पहाड़ पहाड़ है, ओ जी टोर्च डालो, इतना झुके कंधा जमीन से लग जाए, लगा आइए नीचे आइए नीचे आइए, एंड द स्कॉर्पियन केम डाउन, बिच्छू नीचे आया, स्वामी जी दंडवत प्रणाम किए, भगवान भोलेनाथ ने आपको ये शरीर के जन्मदिन में बधाई के लिए भेजा है, इस दास का प्रणाम कहना, धन्यवाद, आपको कोई तकलीफ है तो क्षमा, जाइए जाइए, और टोर्च खुद दिखाए, दूर तक दिखाते रहे, खुद खड़े रहे वहां पर, वो बिच्छू चला गया। ये कहानी नहीं है, आंख से देखिए कैसे हो सकता है, जब हमारे हृदय में, ये क्या बात है, बड़ी बात नहीं जी, वो ऐसे बैठ के लिख रहे हैं, बहुत बड़ा मच्छर यहां बैठेगा, ओडिशा में तो कटक में भुवनेश्वर में बहुत मच्छर है, इतना बड़ा मच्छर है, उसके ऊपर हाथ लगाओ तो भी नहीं उड़ेगा वो ऐसे करके बैठे हैं लिख रहे हैं, और कोई मच्छर को उड़ान जाए तो छोटा प्राणी है पेट भर जाएगा तो उड़ जाएगा, और कोई भाषण करने लगे उनके चेले जो होते हैं ना सेवक लोग, क्या छोटा प्राणी है, खटेगा फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जी आप खाना खाने बैठते हो, उस समय हठात कोई आए आपके खाने की थाली छीन के ले जाए, हाउ डू यू फील, हाँ कैसा अनुभव करोगे? अब वो भोजन कर रहे हैं, करने दो, हाँ उनके सामने से देखिए। ये जो श्री श्री अखंडानंद जी महाराज के जब 75 साल हुए, तो उन दिनों में हम लोग वृंदावन में हुए थे, हम लोग विदेश में थे, इसलिए वो उत्सव के 10 दिन के पहले वृंदावन गए थे, 4-5 दिन रुके थे। तो महाराज जी इन दोनों में प्रवचन नहीं करते थे, प्रश्न उत्तर होता था। तो किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी ये जो स्थित प्रज्ञ है क्या इस कली काल में संभव है? सबसे पहले तो ये मूल प्रश्न था, महाराज जी को खुद को देखने से ही पर्याप्त था, फिर भी महाराज जी को पूछ रहे, महाराज जी ये जो स्थित प्रज्ञ है क्या ये कली काल में कोई स्थित प्रज्ञ संभव है क्या? एक क्षण को भी, हाँ जी नारायण ये बैठे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो भगवान कृष्ण ने जल्दबाजी में थोड़े कहे, इनसे कई विशेष लक्षणों के धनी हैं महाराज जी, हमारे गुरु महाराज को दिखते। तो ये क्यों क्यों कहते क्यों है? श्री श्री स्वामी चिन्मानंद जी महाराज को भी ये प्रश्न लखनऊ में पूछा गया था कि महाराज जी क्या स्थित प्रज्ञ संभव है, क्या आपने किसी को देखा है? एक नहीं मैंने 3 देखा हूं, श्री श्रीमानंद महिमा, स्वामी चिदानंद जी महाराज, और तीसरे बोले स्वामी अखंडानंद जी महाराज। तो ये जो हम कहते हैं क्या ये संभव है, तो संभव तो है, फिर हमको करना क्या? करने के लिए जागृति करना है। जागृति मैंने अपनी छोटी छोटी बातों में, एक बहुत छोटी बातों में, जैसे कि आप किसके घर में गए, अब घर में गए वहां पानी टपक रहा है, तो अपने हाथ से क्या नल बंद करने की आपको इच्छा होती है क्या? पूछो अपने आप को। गमला गिरा पड़ा है, गमला गिरा पड़ा है, उस गमले को खड़ा करने की आपको इच्छा होती है क्या? फंक्शन है उनके घर में, कारें आ रही है जा रही है, और गमले को टक्कर मार के गमला तोड़ दिया है, तो उसकी मिट्टी को जमा करके उस पौध को ठीक खड़ा करके वो शाम तक मर नहीं जाए, इसके बारे में जागृति आपके मन में होती है क्या? ये बात बहुत छोटी है ऐसा लगता है, किंतु साधना के नींव है। हम लोग ये हरिद्वार से ट्रेन में बैठे, हरिद्वार से ट्रेन में बैठेंगे तो नाम है मसूरी एक्सप्रेस, अभी भी चलती है, रात 10:45 बजे, सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचाती है। उन दोनों तो फर्स्ट क्लास एसी नहीं था, फर्स्ट क्लास ही था, तो हमको अभ्यास है सवेरे उठे तो शौचालय में जाना चाहिए। मैं उठा, 4 लोग, इधर बड़े स्वामी जी हैं, डॉक्टर कुट्टी है, उधर स्वामी साकेत है, स्वामी जी का ऊपर का बर्थ हम हटा देते हैं, हम नीचे सोते हैं, और स्वामी जी के ऊपर ऐसे सोना उचित, नीचे सो जाते हैं, गुरु है मर्यादा करते हैं। तो उठे तो डॉक्टर कुटी ध्यान में बैठे रहे, हमसे कहते हैं अध्यात्मानंद जी राइट में नहीं जाना, लेफ्ट में जाना, राइट वाला शौचालय ना किसी ने गंदा करके रख, उल्टा बैठ गया, उल्टा गंदा करके रख दिया है, देहरादून में साफ होना चाहिए था, नहीं किया है। अरे बड़े महाराज जी सिकुड़ के लेटे हैं और ओढ़ करके, उसमें बोले अध्यात्म यू मे गो राइट और लेफ्ट, बिकॉज रात में सोने के पहले ये दास दोनों ओर के टॉयलेट को साफ करके बाद में सोया था। बताइए, मदर टेरेसा कहती हैं अनक्राउन्ड किंग ऑफ द वेस्ट स्वामी चिदानंद जी महाराज को, स्वामी शिवानंद गुरु खुद कहते हैं भगवान बुद्ध ने फिर से अवतार लिया। श्री शिवानंद महिमा कहती हैं बाबा का दर्शन साक्षात नारायण का दर्शन, और वो कहते हैं सोने के पहले हम दोनों ओर का शौचालय धोकर के दास सोया था। अपने आप को ठठो लो, ये कोई चमत्कार नहीं है, ऐसे हाथ से कोई ये फूल माला निकालना या कोई मोती की माला निकालना या घड़ी निकालना या कोई राख डाल देना नहीं है, बिल्कुल जमीन पर चलने वाली बात है। गढ़वाली आदमी है जो स्वामी जी के यहां रसोई बनाता है, छप्पन सिंह, चलने में उसको तकलीफ है। गुरुदेव के कुटीर में, गुरु निवास में 10 लोग हैं, सभी लोग तो देखते होंगे उसको, ज्यादा ही देखते होंगे बड़े स्वामी जी से। बड़े स्वामी जी ने पूछा, छप्पन सिंह जी, गुरु जी, जी स्वामी जी, ये पांव में क्या हुआ है? वो कुछ दिन से फोड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ हो रही है। तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? हॉस्पिटल का टाइम में मेरे को छुट्टी नहीं होती है। अच्छा आओ आओ इधर बैठो। स्वामी जी खुद अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स ले आए, उसका पांव अपनी गोदी में रखे और डिटॉल से सब साफ किया और देखा कहां कैसे पका है, उसको धीरे से पंचर करके सारा मवाद निकाल लिया और उसको पट्टी बांधी। कहा ठीक इसी समय कल मेरे से एक बार और पट्टी बांधवा लेना, नहाने के लिए थोड़ा लंबा पांव करके, गीला ना हो ध्यान रखना। हफ्ता भर तक स्वामी जी बांधते रहे। क्या डॉक्टर नहीं था क्या? डॉक्टर को कहा जा सकता, डॉक्टर आके कर सकता था, किंतु ये जो योगी जो है वो योगी कहने से, योगी को लंबी जटा बढ़ाने से योगी नहीं होता है। अगर जटा बढ़ाने से योगी हो गया तो सारे सरदार जीवों को योगी कहना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल काम है। उल्टा लटक गया तो योगी है, उल्टा लटकने से कोई योगी बनता है तो जो चिमकादड़ है, जानते हैं चिमकादड़, चमा चिड़ियों, उसको योगी कहना पड़ेगा, वो तो सारा 12 घंटा लटकती उल्टा। अरे पानी में चल गया योगी है। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास में एक योगी आया था, उस योगी ने कहा मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा अच्छा, कितने साल तक साधना किया? बोले 12 साल तक। रामकृष्ण ने सिर ठोका, अरे एक पैसे में हम गंगा पार जाते हैं, एक पैसे में वापस आते हैं, और एक आना दे दिया तो 2 घंटा हमको वो गंगा जी में घुमाता है, इसके लिए तू 12 साल बर्बाद कर दिया, ये क्या योग है? अगर पानी में चलने में कोई अपने आप को योगी कहता है तो मछलियां तो सारा जीवन रहती है, तो क्या ये मछली है वो क्या योगी है? जमीन के नीचे मैंने अपने आप को गाड़ दिया तो योगी हूं? अरे मेंढक 6 महीना रहता है जमीन के नीचे, तो नहीं नहीं ये योगी है क्या? ये दाल चावल नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? सब्जियां खाते हैं, सूखा सब्जी खा ली, कच्चा सब्जी, वो तो गाय भैंस बकरी भी पकाकर छोंक मार के नहीं खाती है, वो लोग भी कच्चा ही खाते हैं। तो इन तमाम चीजों को योगी नहीं कहना चाहिए, बाल बढ़ गया, लंबा भस्म लगा दिया, कपड़े पूरे निकाल दिए, उल्टे लटक गए, ना ये सब ड्रामा है। ठीक है साधना होगा किंतु योग के साथ में इनका कोई संबंध नहीं, योग का है अपने आचरण। हमारे श्री विष्णु सहस्रनाम में लिखा है आचार प्रभव धर्म, आचरण जो है वो श्रेष्ठ धर्म है। कृष्ण कहते हैं कि हम अपने सुख दुख, हमारे जीवन के तमाम अवस्था में समत्व बुद्धि रखें, समत्व बुद्धि रखें, ये संतुलित सम्यक कहा है, सम्यक व्यवहार, सम्यक वाणी, सम्यक आचार, संवेदनशीलता है कि कोई एक देखिए एक एक प्रकार होता है संवेदनशीलता का, कि कोई एक आदमी है वो यश की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझको यश मिलना चाहिए, कितना भी मैं दुख उठा लूंगा। दूसरा आदमी बोलेगा मेरे को क्या यश से मतलब है, कोई मतलब नहीं है मेरे को, अप यश मिले तो मिले, मैं जैसे जीवन यापन करता हूं वैसे करूंगा। कितने ही लोग उसको रोकते रहे, टोकते रहे, तुम शराब पीते हो, तुम तंबाकू खाते हो। हाँ एक महात्मा मिले, बोले कि मेरा पांव नीचे है ना, कमर के नीचे का पूरा बदन दर्द कर रहा था, फिर एक सेप्टिक हो गया, कमर में तकलीफ हो गई, हमने कहा ये तंबाकू क्यों खाते हो? तो बोलते हैं कि उससे नहीं होता है। अरे क्या उससे नहीं होता है? हम अपने तुक, अपने तर्क, अपने आप अपनी सुविधाओं के लिए जोड़ लेते हैं, नहीं नहीं इससे नहीं होता है, तो किससे होता है? एक बार करके तो देख लो। हाँ हम अपने यश मिले कि अपयश मिले, मैं तंबाकू नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं तो दारू नहीं छोड़ सकता। तो एक होते हैं कि यश के लिए कुछ भी करेंगे, दूसरे अपयश के लिए कुछ भी कर देंगे, अपयश हो तो हो मेरे को परवाह नहीं। तीसरे हैं हमको सुख ही चाहिए, दुख कभी चाहिए ही नहीं, तो सुख के लिए वो कितना भी दुख उठा सकता है। ध्यान दें, सुख चाहिए तो दुख तो उठाना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं नो गेन विदाउट पेन, आपने तकलीफ नहीं किया। लोग क्या कहते हैं कि महाराज ये ट्रेन में जितना सामान कम लेके जाओ उतनी सुविधा रहती है, उतनी सुख रहती है। अरे ट्रेन में जाओ अपना टिफिन बास्केट साथ में ना हो, जिसमें खारी पूरी बटाका की सूखी भाजी ये गुड़ पापड़ी ये सब ना हो, चवाणु गिवाणु ना हो, और क्या बोलते हैं अमूल के आइसक्रीम ना हो, श्रीखंड ना हो, तो मजा नहीं आता है। पान की पेटी तो चाहिए, और ट्रेन में क्या करेंगे, चेस भी है, ताश खेलने के लिए चाहिए, ट्रांजिस्टर भी चाहिए, वो इतना सारा सामान, वहां जाके क्या करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, पूरा नेट ही लेके आता है। तो सामान बढ़ गया, अभी सामान बढ़ गया तो दुख है, मगर सामान है तो ट्रेन में यात्रा का सुख है। तो सुख के लिए दुख को तो भोगना पड़ेगा। तो दुख सुख यश अपयश ये तमाम एक दूसरे के पहलू हैं, सहायक हैं। यश को पूछो तो अपयश आएगा, सुख को पूछो तो दुख आएगा। क्या कहते हैं कि साधना में हमें अपने आप को चुनना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। हमारा द्वंद्व है, सबके जो द्वंद्व हैं वो अलग अलग द्वंद्व हैं, किंतु एक तमाम द्वंद्व के पीछे हमारा जो एक रुचि हो वो क्या है, परम तत्व की सत्व की प्राप्ति की हो। कोई भी द्वंद्व हो, क्या कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, ज्ञान को छोड़ के मैंने परमात्मा तत्व को जानना, आत्मा को जानना ये ज्ञान है, हमें पीएचडी ज्ञान नहीं है। ब्रह्मानंदम, ब्रह्म का आनंद है, उसे कोई कम आनंद नहीं चाहिए। ए खाने पीने का आनंद नहीं है, पहनने घूमने का नहीं है, फूल माला कोई पहना है तो आनंद, नाम यश अखबार में फोटो छुप गई, ये इनके आनंद का आनंद नहीं कहते। आनंद ऐसा है कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम, एक बार उसकी प्राप्ति के बाद में कुछ प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाए ना, कोई आशा नहीं रह जाए, कोई आकांक्षा नहीं रह जाए, कोई तृष्णा नहीं रह जाए, कोई वासना नहीं रह जाए, अपने आप में हमेशा इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट होता है ऐसे। हमारे ऋषिकेश में एक बार चोर आ गए, डकैत, वो ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ में एक घंटा ड्राइव करो, नरेंद्र नगर है, वहां हमारी तहसील वहां होती थी, ट्रेजरी वहां होती थी, तो सरकारी बिन सरकारी तमाम आदमियों को वो सरकारी तिजोरी में पैसा लेने देने के लिए नरेंद्र नगर जाना पड़ेगा, वो झिकझिक वाला रास्ता है, पहाड़ का रास्ता, कहीं से भी चार पांच लुटारू पकड़ लेंगे, मार मुड़ देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, पैसा सब लूट लेंगे, स्कूटर ले लेंगे। एवरीडे इट वॉज हैपनिंग, एक डेढ़ दो महीना हो गया, तीन दरोगा, दरोगा कहते हैं हिंदी में वो पुलिस स्टेशन का अधीक्षक, तीन दरोगा बदली हो गए, कुछ नहीं होगा। फिर एक नया दरोगा आ गया, उसने कुछ ट्रैक किया और पकड़ा, ऐसे मारपीट में एक आदमी को तो वहीं के वहीं मार दिया गया, और दूसरे जो दो तीन लोग थे वो मरे हुए प्राणी को कैसे घसीट के लाते हैं, ऐसे उनको बांध करके जीप के पीछे रगड़ करके लाए। सवेरे कोई चार पांच बजे, सवेरा छह बजे होते होते पूरे ऋषिकेश में पता हो गया कि वो डकैत पकड़े गए हैं। डकैत और कौन पकड़ा था, शिवानंद आश्रम के ठीक बीच में पुलिस का थाना है, मुनि की रेती, उसने पकड़ा था। उसने क्या किया, रास्ते में खंभों के साथ में बांध दिया उनको, कोई उसको लाके लात मार रहा है, कोई उसको थूक रहा है, कोई दंदी गाली दे रहा है, इतनी भीड़ जमा है। अब गुरु महाराज रहते हैं, उनको सत्संग में जाना है सवेरे छह बजे, तो कार वहां से नहीं जाएगी, इतनी भीड़ है। सर बोलते ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता में पैदल चले जाएंगे। फिर क्या बात क्या है, तो पता हुआ ये बात है, ठीक है, सवेरे का सत्संग हो गया, और फिर 7 बजे वापस आए तो स्वामी जी ने वो दरोगा जी उनको बुलाए तो बड़े महाराज जी बुलाए तो आते हैं, उनको चाय दिया, उनको नाश्ता दिया, कुछ किताबें भी दी, फूल की माला भी डाले, अच्छा तिलक भी कर दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने, लोग बहुत परेशान थे। फिर इतना करने के बाद मैं धीरे से पूछा, हाँ दरोगा जी ऐसे जो चोर लोग पकड़े जाते हैं तो आपके थाने में चोरों को रखने के लिए कोई अलग से सेल होगा कि नहीं? हाँ है ना महाराज जी है, उसको ताला चाबी भी रहता है। हाँ रहता है। तो ये जो चोर पकड़े गए तो उनको रास्ते में बांधने का कोई नियम है क्या? नहीं महाराज जी कोई नियम नहीं है। ये देखिए सवेरे से तो आपने बांधा था, काफी हो गया, अभी मेरे को लगता है क्योंकि ट्रैफिक बंद हो जाएगा, पूरा ट्रैफिक बंद हो जाएगा, लोगों को जाने आने के लिए मुश्किल है, ये पुलिस के अंदर लॉ ऑर्डर में आता है, थोड़ा उनको अंदर कर लीजिए, लोगों को आना जाना छोड़ दीजिए। आई होप यू डोंट माइंड टू डू दिस मच। हाँ महाराज जी कर देंगे, उनको कर दिया। फिर बोले कि जब चोर लोगों को पकड़ लेते हो तो फिर उनको खाने पीने का बंदोबस्त भी आपके यहां होता है? हाँ होता है ना, तो देना पड़ता है। मगर वो दरोगा अपने ढंग में बोल गया, बेवकूफ को नहीं देंगे, 3 दिन भूखा मारेंगे। अरे ऐसे मत करो, ऐसा करो अपना तरफ से आप भूखा मार दो, अपने तरफ से खाना नहीं दो। एंड इफ यू काइंडली परमिट मी तो थोड़ा हम गुरु निवास से थोड़ा उनके लिए चाय दूध कुछ नाश्ता कुछ भेज दें। अब दरोगा पिक्स में आ गया, स्वामी जी ने दूध में हल्दी डाल करके भेज दिया ताकि उनको जो मार पड़ी है ना उसमें सुविधा हो जाए। उनको गर्म पानी में नमक घी हल्दी डाल करके भेज दिया कि भाई थोड़ा थोड़ा देर में ये लोग पीते रहना। दोपहर को भोजन भेज दिया। 3 दिन तक गुरुदेव है वहां, रात में प्रार्थना में इन चोरों के लिए प्रार्थना करते रहे। जो लड़ाई करते करते मारा गया है हाँ उसकी इस अवस्था में मौत हुई है तो उसकी सदगति मुश्किल है, किंतु जिस गति में भी जाए वहां से आगे उसकी गति सदगति ही हो। और ये लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने कितने खून कर दिए हैं, तो इनको तो वहां से लगेगी लगेगी, किंतु वो जब तक जेल में रहें तो पश्चाताप करें, अपने आप को अनुभव करें कि हमने गलत काम किया है, तो हम थोड़ा अभी बाकी शेष जीवन है मृत्यु के पहले अपने आप को परमात्मामय करें। कुछ किताबें भी हिंदी में पढ़ने के लिए भेज दी। अब देखिए एक हमारे पास में प्रश्न होता है कि एक तो चोर है और ये चोर के साथ में ऐसा व्यवहार क्या उचित है कि अनुचित है? तो उचित तो कौन बोलेंगे? जो संत है, जो योगी है, जो महात्मा है वो तो कहेंगे। अनुचित तो जैसे कि हमने कहा कि भाई आपके घर में डाका हुआ है, पुलिस आपको बोलेगी कि चोर पकड़ा गया, क्या करेंगे? बिल्कुल जाएंगे, जाकर के FRI लगा देंगे। तो ये तो कॉमन मैन की थिंकिंग है। जब आप साधना करेंगे, योग के पथ पर चलेंगे, तो आपके हृदय में एक करुणा है उत्पन्न होना चाहिए, एक द्रवित होना चाहिए आपके हृदय में। ये द्रवित क्या है कि वो छोटे बड़े तमाम के प्रति प्रेम सहानुभूति। ये परसों शाम को ये हमारा राधा माधव सत्संग हुआ आदरणीय श्री मेहता साहब की स्मृति में, तो प्रकाश एक फूल की माला लेके, बड़ी सुंदर फूल की माला। मैंने कहा मुझे क्यों पहनाते हो? अपनी मां को पहनाओ, पति पत्नी दोनों जाओ उनको पहनाओ, घुटना गिर के प्रणाम करो। तुम में जो ये सद्गुण है, जो इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हो, तो उनके पीछे सद्गुण है वो तुम्हारी माता पिता की प्रेरणा की वजह से। जिन माता पिता ने ये पौध को ऊंचा करने के लिए जिस शुद्ध विचार व्यवहार के जल से आपके जीवन को सिंचित किया है, उन माता पिता से कोई बड़ा तीर्थ नहीं है, कोई बड़ा संत नहीं है। इतने साल की मृत्यु के बाद में भी इतने सारे लोग बैठ करके सुबह से शाम तक हरि कीर्तन करते हैं। अरे कोई सिनेमा वाले, कोई भजन वाले को बुला करके तो भजन कोई भी कर लेगा, हम लोग भजन सुन लेते हैं, किंतु हम खुद भजन करें। सत्यनारायण की कथा की हमने कैसेट मंगा रखी है, हमने भजन की अनुज जलोटा की कैसेट मंगा रखे, तो अनुज जलोटा की कैसेट बजती है, वो अनुराधा पौंडवाल की कैसेट बजती है, सत्यनारायण कथा की कैसेट बजती हो, तुम अपने भीतर कभी बजे क्या? पूछो अपने आप को, जब अपने भीतर जब नहीं बजते हो तो कैसेट का वो बजती रहती है, अधिकांश हम सुनते भी नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। हम अपने काम में रहते हैं, वो अपना शोर करते रहते हैं, हम अपना अंदर से शोर करते हैं। तो क्या कहा है कि जितना हो सकता है उतना सेंसिटिव होना, तो जा करके कैसे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, उससे ज्यादा सेंसिटिव व्यक्ति हम किसी को नहीं सोच सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो दिमाग की सोच थी बड़ी ही कलात्मक थी, उसको बोलते हैं कि एस्थेटिक सेंस। कोई भी चीजें टेढ़ा मेढ़ा पसंद नहीं उसको, ठीक ऐसा वो किताब ऐसी रखी है तो रविन्द्रनाथ खुद खड़े हो जाएंगे, उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, वो किताब टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। ये हर चीज को टेढ़े मेढ़े को, कोई आदमी तिरछा बैठ जाएगा तो खड़े होकर के उनको थोड़ा सा ठीक करेंगे, तुम सीधा बैठो, ऐसा कोई आवाज करेगा तो उनको लगेगा कान में जैसे कि बम फूट गया। वो इतने कोमल थे, कोमल बोलने से शरीर में नहीं चित्त में, इतने कोमल थे कि थोड़ा भी एक शोर उनको बहुत बड़ा लगता था, थोड़ा भी अव्यवस्थित उनको बड़ा आकर्षता था। उनकी तुलिका चलेगी तो उसमें संतुलन होता था, उनके हाथ में भी मुद्राएं होती थी, इनके चेहरे में आंखों में भी एक सौंदर्य होता था। तो जो सौंदर्य प्रिय कौन है, जो परमात्मा को विशेष चाहता है, क्योंकि तो परमात्मा क्या है, अधरम मधुरम मदनम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम रचितम मधुरम मधुराधिपते, जो संपूर्ण मधुर 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 है, तो तमाम जगह में माधुर्य ही हो, उनके व्यवहार में माधुर्य हो, इनकी वाणी में माधुर्य हो, इनके विचार में माधुर्य हो, उनके वो जूते इधर उधर पड़े तो उनको ठीक हाथ से उठा करके लाइन से करना, कुछ कचरा पड़ा है तो उठा करके रख देना, इतनी छोटी छोटी बातों में। क्योंकि रविन्द्रनाथ को जो पीड़ा होती है वो पीड़ा क्यों होती है, क्योंकि वो कृष्ण ने जो कहा है समबुद्धिर विशिष्यते, तो उनके जीवन में समबुद्धि है। कैसी समबुद्धि, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला तो कलकत्ता से सुबह से शाम तक हजारों लोग आने लगे, कोई शॉल ला रहा है, कोई दूसरा ला रहा है, कोई गुलदस्ते ला रहा है, कोई उनके लिए संदेश लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, आने वाले आने वाले आने वाले दो महीने तक चलते रहे। अब धीरे धीरे जब कम हो गए तो वो क्या हो गया, जैसे कि हमारा गिरीश भाई हमारे सामने बैठे, हम यहां हैं, तो उतना ही सामने शांति निकेतन में जहां रहते थे दूसरे घर में एक सज्जन रहते, तो सज्जन है वो ऐसा कुर्सी में ऐसा बैठते थे, एक हुक्का बंगाली लोगों का बैठे गुड़गुड़ 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 हुक्का पीते, लोग आ रहे जा रहे, वो रविन्द्रनाथ भी घर के बाहर आंगन में बैठते थे, सुबह से लोग आ रहे, कोई माला डाल रहा है, फूल डाल रहा है, और ये इतना दूर है, कितना 40 फीट दूर हुक्का, वो एक दिन भी नहीं आया, आया नहीं, इसने कहा नहीं कि हमें बड़ी खुशी हुई, कुछ एक दिन भी नहीं आया, लोग दूर दूर से आते, ये नहीं बंदा आया। जब दो महीने के बाद में सब ठंडा हो गया तो रविन्द्रनाथ खुद ही एक अच्छा शॉल मंगाए, एक फूल के थाली मंगाए, फल का टोकरी मंगाए, गुलदस्ता मंगाए और उसको शाल डाले, वो आदमी को फूल माला डाले, उसके पांव छुए, एक टू प्रणाम करी, पूछा मैं थोड़ा प्रणाम करूं, हाँ करुण करुण, वो बोलता है करो करो, तो फिर रविन्द्रनाथ बैठने भी नहीं कहा, हाथ जोड़ से उनसे क्या कहे पता है, महाराज आप मेरी प्रेरणा मूर्ति है, मैं यहां सामने रहता हूं, आपको देखता रहता हूं, आपको देखते देखते मेरे हृदय में जो दिव्य भाव उत्पन्न होते हैं वही भाव ये गीतांजलि के रूप में बाहर आ गए, तो इसलिए ही आपकी कृपा से आपकी उपस्थिति से ही मुझे ये नोबेल प्राइज मिला है, मैं आपके प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। तब वो निष्ठुर आदमी क्या बोला, अखौन बुझिए, अब लगता है कि तुम नोबेल प्राइज प्राप्त करने के योग्य हो, अब तक नहीं था, उसको प्रणाम किया, उसको शॉल डाला, बताए अखौन बुझी जे रोविन तुम्हें जा पेश हो ठीक ही पेश हो, अभी रविन्द्र ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तुमको जो मिला है नोबेल प्राइज ठीक मिला, अब तक नहीं ठीक था, जब मुझको आकर प्रणाम किया, ऐसे निष्ठुर लोग हैं, उनके प्रति भी रविन्द्रनाथ की भावना देखे तो क्या कहा है, समबुद्धिर विशेषते, उनके लिए रविन्द्रनाथ को मुंडन करने की आवश्यकता नहीं है, ऋषिकेश में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वो तमाम प्रकृति की हवाएं जो चलती है, प्रकृति की हवाओं के साथ में डालियां जो अटखेलियां करती है, जो कलियां खिलती है, जो पुष्प को विकास होता है, मधुमक्खियों का गुंजारव होता है, तितलियों के रंग होते हैं, इन तमाम के साथ में वो एक होते रहे, वो प्रकृति है उसके साथ में एकात्म भाव। सूर्य है वो किसी एक विशेष के ऊपर में प्रकाश नहीं डालता है, सूर्य कहता है मैं तो चमक लेता हूं, मेरा समय उदय अस्त का हो जाता हूं, कोई अपनी खिड़की खुली रखे उनके घर के आंगन में मैं आ जाता हूं, कोई बंद रखे तो नहीं, मुझे किसके खिड़की से कोई फर्क नहीं है, कोई सूर्य को मित्राय नमः, रवय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्टे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्का नमः, भास्कराय नमः, कहीं किसको अर्घ्य देता है तो सूर्य उनका कोई विशेष कल्याण नहीं करता, हाथ छू कोई ऐसे करेगा तो उनको आपत्ति नहीं है, कोई गंगा जी में दूध चढ़ाता है और कोई कुल्ला भी करता है, कोई त्याग भी कर देता है तो गंगा को क्या फर्क पड़ता है, गंगा को कोई फर्क नहीं, वो सूर्य को भी कोई फर्क नहीं, कोई पुष्पों को देकर के वाह इतना बोलता है, कोई पुष्प को तोड़ करके अपने माथे में सजाता है, कोई पुष्प को अपने कोट में लगाता है, कोई पुष्प को अपने ऑफिस में दफ्तर में सजा देता है और कोई पुष्प को परमात्मा को चढ़ा देता है, पुष्प ने तो अपना काम कर लिया है, पुष्प ने अपना विकास कर लिया है, पुष्प ने अपना सौंदर्य कर लिया है, पुष्प ने अपनी सुगंध को फैला लिया है, अब इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक इट। तो ये प्रकृति कृष्ण कहते हैं कि समबुद्धिर विशेषते, समबुद्धि कैसे होती है, साधु स्वपीच पापेशु, साधु का तो सम्मान करो करो। आज श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका जन्मदिन, वो क्या कहते हैं कि अमानिनान मान देना, जिसको मान की आवश्यकता नहीं है उनको भी मान दो। हाँ, हम आपको कुछ चार दिन के पहले कह चुके कि उनके गांव में कोई भागवत करने आया था, वो दुखियों के वापस जा रहा है, फिर तुम क्यों वापस जा रहे हो, कहते हैं कि भाई वो यहां तो कोई चैतन्य है उसकी भागवत लोग सुनते हैं। अरे चैतन्य तो मैं हूं, देख मेरी भागवत, उन्होंने गंगा जी में डाल दी अपनी भागवत को, चल मैं तुझे लेके जाता हूं तू भागवत कर। कौन करेगा ऐसे, जो दूसरे को हाथ पकड़ करके ऊंचा उठाने के लिए कृपा करे, जो मेरे को दोष करे, जो मेरे को डंडा मारे मैं उसका भी कल्याण की कामना करूं, जो मेरा प्रेमी है उसकी तो करूं करूं, ना करूं तब भी क्या, मेरे जो बुरा कहता है उनके लिए भी करूं। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं जो आपको सबसे बुरा बोलता है, जो आपका सबसे बुरा करता है, जो आपका सबसे पहला दुश्मन है, उसके लिए रोज प्रार्थना करो प्रभु उसका मंगल करे, उसका शुभ करे, उसका कल्याण करे। चंड कौशिक है, हाँ बड़ा मुश्किल सर्प था, किंतु भगवान महावीर ने कहा चंड कौशिक तू अपने स्वभाव में परिवर्तन कर तेरा कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, वो सांप के साथ में भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते महावीर। बुद्ध है बचपन में युवान अवस्था में रहे, फूल तोड़ करके वो ऐसे कोई उसको एक दूसरे पर मार रहे थे और फूल को पांव में रगड़ रहे थे, तो वो छोटा सिद्धार्थ था उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्या कर रहे हो इन कोमल फूलों को आप रगड़ी कर रहे हो, मत करो ऐसा। हाँ बोले तो ये क्या कर रहा है, कोई फूलों की माला, अरे ये सौंदर्य में से सौंदर्य कर रहा है। तो इतनी बात होती है। कल परसों किसी ने हमसे कहा स्वामी जी आप होली खेलेंगे तो रंग नहीं डालना, फूलों की होली खेलना, तो फूलों की भी होली क्यों खेलना है, सिर्फ फूलों की होली खेलोगे इसका मतलब क्या हुआ, फूल के ऐसे करके पत्तियां तोड़ लोगे एक दूसरे पर डालोगे फिर यहां से चलते रहोगे, यहां इतना सुंदर सांप है उसको गंध करोगे, क्या जरूरत है फूलों की। अरे फूलों से अपने आप को कहो भाई होली मुबारक हो गया खत्म, अगर आपने किसी के ऊपर फूल डाले नहीं डाले तो क्या फर्क पड़ता है, किंतु अगर डाल दिए तो फर्क पड़ता है, क्योंकि उन फूलों को ऐसे नोच नोच करके फेंकेंगे, उसके बाद में क्या हुआ इसके ऊपर में लोग चलेंगे, उसके बाद में झाड़ू लगाने की अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो कैसी भी अवस्था में अपने मन को स्थिर करने के लिए कहते हैं कि मित्र और शत्रु के बीच में जो समय है, अर्जुन के लिए मित्रता और शत्रुता बहुत बड़ी कीमती बात है, बहुत बड़ी कीमती बात है कि क्षत्रिय के लिए सदा रहिए, क्षत्रिय बहुत संवेदनशील होते। कल हमने आपसे एक बात कही थी अगर आपको याद हो, ये कहा था कि वो राजपूत है और एक वणिक था, वो वणिक को बोलता है तुम ऊंच नीच कर, हाँ वो बोलता है नीची तो नहीं करूंगा, लड़ तो लूंगा तेरे से। और उसने क्षत्रिय में अपनी सूरता में जाकर के अपनी पत्नी को बच्चों को मार दिया। हाँ, तो ये वणिक ने तो नहीं मारा, तो ये अपने आपके अहं के कारण में क्षत्रिय है, वो शत्रु मित्र को नहीं भूल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही विचार से नहीं बनता है, प्रत्येक व्यक्ति की विचार शैली भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रहे कि समबुद्धि में हम अपने आप के द्वंद्वों के बीच में खुद ही फंसते चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि एक बार यश अपयश का प्रश्न हो जाए, यश अपयश, मेरा नाम बदनाम कर दिया। क्या होता है नाम बदनाम, मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर किसी ने कुछ शब्द कहा, ये एक माता जी है यहां पर, वो आकर के प्रणाम बोलते स्वामी जी राम राम जी, तो मैं उनको बोलता हूं दादी मेरी भी धोख ले लो, मैंने मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। तो मेरे को क्या कहती है दादी, हमने तो आपका प्रणाम स्वीकार किया ही नहीं, आपको वापस चला गया। कितनी सुंदर बात है, हाँ बहुत सुंदर बात। कोई अगर आपको कुछ कहता है, अगर आपने उसको सुना ही नहीं तो क्या तकलीफ है, और सुन भी लिया कि वो आपकी बात आपको वापस, तकलीफ क्या होती है। किंतु होता नहीं ऐसे। हमारे आश्रम में एक दिन सवेरे सवेरे कोई आदमी आया, 8 सितंबर थी, स्वामी शिवानंद जी का जन्मदिन था, सामने कोई 850-900 लोग योगाभ्यास करने के लिए बैठे थे। एक छोटा तखत लगाते हैं स्टेज के ऊपर, तखत में हम बैठते हैं, बाकी तो स्टेज खाली रहता है, वहां पर कुर्सियां लगी रहती है कि मेहमान लोग आए तो। तखत के ठीक बीच में एक सज्जन आकर के बैठे, हमने कहा नमस्ते, थोड़ा इधर बैठ जाइए, क्यों आपको मेरे यहां बैठने से तकलीफ है क्या। मैंने सोचा कि वो तय करके आए मेरे से लड़ाई करके जाएंगे। सवेरे 5:15 बजे, मेरा तकलीफ तो कोई नहीं है, किंतु मुझे योगासन क्लास चलानी है, डेमोन्स्ट्रेशन भी करना होगा, मेरे को डॉक्टर सीसी रावल ने भेजा है। अच्छी बात है, कुर्सियां है ना सब, उस पर आप बैठिए। क्यों यहां नहीं बैठ सकता? नहीं, जरूर बैठ सकते हो, पर मैं जब उठूंगा बैठूंगा हाथ पांव लग सकते हैं आपको, यहां बैठिए ना। मैंने समझा था स्वामी शिवानंद जी महाराज है, बड़े उदार थे, आप इनके शिष्य हो, इतने अकड़ू हो, मुझे पता नहीं था। उठ करके वो चला गया, चलाने गया, उसने 4 पेज का टाइप किया हुआ जितना गंदा पत्र लिख सकता है लिखा, और बिना लिफाफे में डाले आश्रम के गेट के ऊपर सिक्योरिटी को देके चला गया। तो सिक्योरिटी तो पहले पढ़ेगा ही पढ़ेगा क्या है, फिर वो जाकर के किताब के जो बुक स्टॉल है उसको देगा ये कोई देके गया है, तो बुक स्टॉल वाला पढ़ेगा, फिर वो दफ्तर में रिसेप्शन में आएगा वो पढ़ेगा, फिर वो दफ्तर में आएगा वो पढ़ेगा, तब जाकर के मेरे पास आने में 5 लोग ने पढ़ लिए, तो मैंने भी उसको बोर्ड के मीटिंग में पढ़ा, ऐसा किसी ने लिखा है। तो फिर क्या करना चाहिए, मैंने कहा उसकी आलपिन निकाल लो आलपिन निकाल लो और उसको 4 टुकड़े करो, पीछे जो कोरा भाग है उसको रफ स्लिप में उपयोग करना, और क्या कर सकते हो। वो फिर पता किया, वो डॉक्टर का जो बिजनेस प्रोफेशन है वो ए यूरोलॉजिस्ट, क्या होता है यूरोलॉजिस्ट। और जब कैंप पूरा हुआ बहुत डॉक्टर लोग आते हैं, तो एक डॉक्टर ने बहुत अप्रिशिएशन का चिट्ठी लिखा, तो उसको भी वो तो लिफाफे में मेल करके लास्ट दिन में लोग जैसे ऑफरिंग करते हैं तो उसमें उन्होंने दिया था, तो उसको भी मैंने बोर्ड मैनेजमेंट में पढ़ा। बोले क्या करना चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, एक बात स्पष्ट हो गई, एक तो यूरोलॉजिस्ट जो नीचे से लिखता है, दूसरा है न्यूरोलॉजिस्ट वो ऊपर से लिखता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट का गौरव नहीं करना, यूरोलॉजिस्ट का दुख नहीं करना। तो कोई माला पहना है तो खुशी मत हो, और कोई माला नहीं पहना है तो दुखी नहीं हो। कोई आपको बैठने के लिए कहे तो धन्यवाद कहो, नहीं बैठने के लिए कहे तब भी धन्यवाद कहो, क्यों एक जगह और किसी को मिलेगी। हमेशा कैसी भी अवस्था में अपने आप को संतुल रखना, मित्र और शत्रु के बीच में संभाव रखने की प्रक्रिया होती क्या है, कौन रख सकता है, हर व्यक्ति रख सकता है, हर व्यक्ति रख सकता है, क्योंकि थोड़ा हमें अपने निजी जीवन में गंभीर होने की आवश्यकता है। हम छीछले हैं, छोटी छोटी बातों में हमको सुख दुख हो जाता है, छोटी छोटी बातों में ये इंसल्टेड भी, इंसल्ट होता क्या है, ये यहां पर एक सज्जन बैठे हैं, अगर उस सज्जन को मैं बोल दूं क्या यार कितना सुंदर लगता है जैसे अमिताभ बच्चन, तो वो क्या अमिताभ हो जाएगा क्या, वो जैसा है वैसा ही है, ऐसा कद्दू दिखता है, तो कद्दू बोलने से वो ना कद्दू होता है, अमिताभ बोलने से ना अमिताभ हो जाए। तो आज को राजकुमार बोलने से कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होने वाला है, हवा में शब्द आए हवा में गए, कद्दू बोलने से कद्दू दुखी नहीं होना, हवा में शब्द आए हवा में गए। तो हमने को शब्द पकड़ना नहीं, कैसे करके होना, क्योंकि फिर से तीन दिन पहले जो बात कही थी उसको फिर दोहराते हैं। क्या कहा? सी बट लुक नॉट, टच बट फील नॉट, टेस्ट बट रैलिश नॉट, और हियर बट लिसन नॉट। खाओ पियो छको नहीं, बोलो चालो बको नहीं, घूमो फिरो थको नहीं, देखो भालो थको नहीं। कृष्ण कहते हैं कि आपका कोई सुरन हो, हितेच्छु हो, कोई मित्र हो, कोई उदासीन हो, कोई मध्यस्थ हो, कोई द्वेष करने वाला हो, कोई बंधु हो, साधु हो, पापी हो, तमाम के प्रति देखो ये भगवान ही के स्वरूप है। ये देखो गुलदस्ते में कितना तरह के रंग के फूल होते हैं, इतना तरह के रंग के फूलों के पीछे कुछ कुछ कांटे भी तो रहते हैं, कुछ फॉन लगा दिए जाते हैं, कुछ हरियाली लगा दी जाती है, तो न उनमें सुगंध है किंतु फिर भी हरियाली फन लगाई जाती है, वो गुलदस्ते की शोभा है। तो ये तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, एक मां के चार बेटे हो तो सबकी बुद्धियां अलग अलग होती हैं, उनके लिए क्लेश नहीं करना, सबको देखना। ईश्वर हर स्वरूप में आ रहा है, ईश्वर यह भी स्वरूप ईश्वर का है, यह भी स्वरूप ईश्वर का है। जब सतत हम ईश्वर को हर व्यवस्था में, हर अवस्था में, हर प्रसंग में, हर अनुभूति में, हर मौके पर, हर व्यवहार में, हर रूप में, हर रंग में बार 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 देखने की चेष्टा करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, अनुभूति करते रहेंगे, फिर आपको कोई मान दे अपमान दे कोई फर्क नहीं होगा। फिर आप अनुभव करेंगे कि कृष्ण हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। समबुद्धि विशेषते, कृष्ण कहते हैं यही बुद्धि वाला जो है वो समबुद्धि है। हरि ओम, शांति शांति शांति।